वेणु गीत की चर्चा चल रही है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय के तीसरे श्लोक में हम पहुंचे थे, जिसमें कि शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तद् व्रज स्त्रिया श्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो नुवर्णयन्। जब व्रज स्त्रिया गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज सुनी, जो कि बहुत मधुर है, तो उनके हृदय में बहुत तीव्र कृष्ण प्रेम उभर आया। वैसे तो गोपियों के हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम पहले से ही था, लेकिन जब कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी तो वो प्रेम ज्यादा बढ़ गया और प्रकट हुआ तीव्र रूप से। हम देख चुके हैं स्मर उदयम। स्मर कामदेव है, लेकिन जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, ये भौतिक कामदेव नहीं जो लोगों को इंद्र तृप्ति के लिए प्रेरित करता है, जो यहां पर भौतिक जगत में राज करता है, जिसका नाश शिवजी ने किया था, वो कामदेव नहीं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ये जो सर्वश्रेष्ठ स्मर है, कामदेव है, क्योंकि वो गोपियों के हृदय में सच्चा प्रेम प्रकट कराते हैं। इस तरह से भगवान की बांसुरी की वाद्य वादन से उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उभर आया। यहां पर चर्चा कल समाप्त हुई थी। आगे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, अन्ववर्णयन। अन्ववर्णयन मतलब अनुवर्णयन। जो गोपियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमेशा कृष्ण के वर्णन करना आरंभ कर दिया उन्होंने। वैसे भी गोपियां सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं कि वो सतत कृष्ण का स्मरण चिंतन करते हैं, और उनकी भावना की जो तीव्रता है और उनका जो भाव है वो अतुलनीय है। तो कृष्ण के बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियां कृष्ण के लीला के बारे में चर्चा करने लगे। यहां शुकदेव गोस्वामी काश्चित शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब है कि थोड़े गोपियां या कई गोपियां, लेकिन सब नहीं। सारे गोपियों ने ऐसे वर्णन करना शुरू क्यों नहीं किया, यह हम बताया गया है स्वसखीभ्य। स्वसखीभ्य इसका मतलब है कि केवल वो अपने अपने सखियों के साथ, अपने अपने जो निकट के सहेलियां हैं उनके साथ में। अब इसके लिए थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता है। भगवान के भक्ति में, भगवान के धाम में असीमित विविधता है। भगवान की सेवा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, भाव हैं, और अलग अलग तरीके के भक्त होते हैं जो अलग अलग भावनाओं में भगवान की सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और भगवान इन अलग अलग तरह के भक्तों से उनकी भावनाओं के हिसाब से उनके उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे विविध रसों का स्वाद लेना चाहते हैं और अपने अलग अलग भक्तों के नाना प्रकार के विविध प्रकार के भावनाओं को तृप्त करना चाहते हैं। और आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे विविध भावनाएं भरे हुए हैं। ये भावनाएं शुद्ध है, प्रेम से भरे हुए हैं। ये भावनाएं गोलोक वृंदावन में भी विद्यमान है, जो कि वैकुंठ लोक की राजधानी के बराबर है, क्योंकि यहां पर भगवान अपने सबसे मधुर रूप श्याम सुंदर या गोविंद के रूप में है। हम पहले भी सुन चुके हैं और जैसा आप जानते भी हैं कि गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कई रस हैं, जैसे कि दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, श्रृंगार रस या माधुर्य रस। तो इन अलग अलग रसों में भगवान की सेवा करने के लिए भक्त वहां पर हैं और भक्त सबको, भगवान सबको संतुष्ट करते हैं। अब गोपियां भी दो प्रकार की हैं, जो वात्सल्य रस में उनकी सेवा करते हैं, जैसे कि माता यशोदा और नंद, जैसे माता यशोदा हैं और जो वरिष्ठ गोपियां हैं, और दूसरे जो कम उम्र की गोपियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं माधुरी रस में, जैसे कि प्रेमी प्रेमिका करते हैं। तो ये सारे जो गोपियां हैं इनके कई दल हैं जिनको समूह कहते हैं। तो गोलोक वृंदावन में क्या चल रहा है, किस तरह से भक्तों का विभाजन है, वैसे श्री रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि नाम के ग्रंथ में बतलाते हैं। तो ये समूह ये एक प्रकार का दल है, कई समूह हैं गोपियों के समाज में, और हरेक समूह में नाना प्रकार के गोपियां हैं। थोड़े वृद्ध हैं, वृद्ध मतलब थोड़े ज्यादा उम्र के, थोड़े कम उम्र के, थोड़े वात्सल्य भाव रखने वाले, थोड़े माधुरी भाव रखने वाले, ये समूह है। हर एक समूह के भीतर और थोड़े छोटे दल हैं, ग्रुप्स, जिनको यूथ कहते हैं। यूथ मतलब वो दल जिसमें कि केवल जो गोपियां माधुरी भाव की हैं, जो कम उम्र की हैं, वो रहती हैं। और हर एक यूथ के अलग अलग नेता रहते हैं। तो इन यूथों को, नेताओं को यूथेश्वरी कहते हैं। तो श्रीमती राधारानी का एक यूथ है, चंद्रावली का एक यूथ है, भद्रा, चित्रा, श्यामा, ये सब यूथेश्वरी हैं। और इनके यूथ में और भी छोटे छोटे और दल हैं, विभाजन हैं, और इनको गण कहते हैं। ये गण की विशेषता क्या है कि इस गण में जो भी गोपियां हैं उनका जो भाव है वो बिल्कुल एक समान है, मतलब मिलते जुलता है भाव। अभी वृंदावन में गोपियों के बीच में भी विविध प्रकार की भावनाएं हैं, और जो माधुरी रस में हैं उनके बीच में भी विविध प्रकार की भावनाएं हैं। थोड़ी गोपियां हैं जो श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं केवल, थोड़ी है जो श्री कृष्ण की नहीं लेकिन श्री कृष्ण की जो गोपियां हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं, इनको मंजरी कहते हैं। तो ऐसे कई तरह की भावना वाले गोपियां हैं। तो जो वृंदावन में गोपियों का विभाजन है वो आयु के हिसाब से, भाव के हिसाब से, सेवा करने की प्रवृत्ति के हिसाब से किया जाता है। तो जब भी ये गोपियां आपस में मिलती जुलती हैं तो वो अपने अपने जो निकट के सखियां हैं गण के हिसाब से, युद्ध के हिसाब से उनमें मिलते हैं। और जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाने जाते हैं, बजाते हुए वन में जाते हैं, या तो फिर वो लौट कर आते हैं, तो फिर ये सारे गोपियां अपने अपने दलों में रहकर कृष्ण के बारे में बातचीत करते हैं। स्व सखीभ्यः मतलब किसी के साथ जाकर बात नहीं करते, ये अपने अपने निकट के सहेलियों के साथ बैठते हैं। और फिर क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी भाव एक समान है, फिर अपने अपने हृदय की बात करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वृंदावन में एक दिव्य विविधता है, और भगवान श्री कृष्ण इस तरह से सारे गोपियों की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो ये वेणु गीत जो है, जो कि दो श्लोक बाद आरंभ होगा, मतलब जो श्लोक या जो बातें गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, वो भी अपने अपने गणों में कहते हैं। ये सारे जो श्लोक आने वाले हैं वो सभी एक ग्रुप में नहीं हो रहा है, अलग अलग जगह एक श्लोक किसी एक ग्रुप में चल रहा है और उसके बाद वाला श्लोक कहीं दूसरे ग्रुप में कोई दूसरे गोपियां बोल रही हैं, ऐसे चल रहा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने इन सारे श्लोकों को एकत्र करके एक साथ प्रस्तुत किया है और हम देखेंगे जैसे जैसे इन श्लोकों को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे तो हरेक श्लोक की भावना अलग है। और ये इसलिए है कि अलग अलग गोपियों ने अलग अलग गणों में इनको बोला है, उनकी भावना को, उनके हृदय की बात को उन्होंने व्यक्त किया है। तो इस तरह से ये जो गोपियां हैं ये अपने नेताओं की बात सुन रहे थे, हर एक गण में अपने अपने जो नेता है वो बोल रही थी और अन्य गोपियां सुन रहे थे। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आगे चलता है। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परोक्ष, कि उन्होंने ये परोक्षवाद, परोक्षवाद के भी दो अर्थ होते हैं। परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट। जो गोपियां अब श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करने वाली हैं वो वैसे देखा जाए तो सीधे से श्री कृष्ण का वर्णन नहीं है। जब गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करना चाहती हैं तो वो बांसुरी की बात करेंगे, जब वो श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी तीव्र आसक्ति है उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो वो कृष्ण बलराम ग्वाल बालों को बीच में लाएंगे, या अगर वो कृष्ण के चरण कमलों की बात करना चाहते हैं तो पृथ्वी माता कितनी धन्य है ऐसे बात करेंगे। मतलब डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, थोड़े बहुत इधर उधर घूम फिर के बात करते हैं, इनडायरेक्ट बात करते हैं, इसको परोक्षवाद कहते हैं। तो ये सारी वेणुगीत परोक्षवाद में है, जो गुणगान हो रहा है भगवान कृष्ण का वो इनडायरेक्ट हो रहा है। तो ऐसे क्यों? एक बात तो ये है कि भागवत में भी बताया है और वेदों में भी कि भगवान श्री कृष्ण को ऐसे चतुर तरह से उनकी प्रशंसा सुनने में पसंद है, उनको आनंद आता है। जब प्रशंसा किसी की बहुत बुद्धिमानी से, चतुराई से की जाती है तो ज्यादा रुचिकर, रसमय लगता है भगवान कृष्ण को। ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए हमें वृंदावन का वातावरण समझना है कि ज्यादा से जो गोपियां ये वेणु गीत बोल रही हैं, जो उन गणों में, यूथों में उपस्थित हैं, इनमें से कई विवाहित हैं और कई गोपियों के बच्चे भी हैं और वो अपने अपने पतियों के घर में रहते हैं। अभी किसी स्त्री को अपने पति के सिवाय दूसरे पुरुष का गुणगान करना ये अच्छा नहीं है, ये नैतिक नहीं है किसी भी एक सभ्य समाज में और खास करके वैदिक समाज में। तो उस समय वृंदावन में भी ये गोपियां खुलेआम श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए हिचकिचा रहे थे कि कैसे कर सकते हैं, कि उनके लिए लज्जा की बात होगी और हो सकता है कि उनके परिवार का नाम खराब हो जाए, कलंक आ जाए परिवार के नाम के ऊपर कि पति को छोड़कर किसी दूसरे के पास का गुणगान कर रही है। तो उनको वर्णन डायरेक्ट करना, सीधे तरह से करना ये मुश्किल था। लेकिन उनके हृदय में स्मरोदय, तो उनके हृदय में ये जो तीव्र प्रेम की इच्छा थी, प्रेम था, वो प्रेम की वजह से वो बोलने के लिए बाध्य हो गए थे, अपने आप को रोक नहीं सके थे। गोपियों के कान वो प्याले के बराबर थे, पात्र के बराबर थे, जो कि कृष्ण के वेणु के अमृत का पान कर रहे थे। और जैसे जैसे ये पात्र भरते 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 और जब पूरी तरह से भर जाते तो फिर भर के बाहर निकलता और वो उनके हृदय से बाहर निकलता उनके बोली से, उनके वचनों से, जो कि कृष्ण का गुणगान था। तो गोपियां कृष्ण का गुणगान करने के लिए बाध्य थी। यही शुद्ध भक्त का स्वभाव होता है कि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए बाध्य होता है, बस स्वाभाविक तौर से उसकी मुख से कृष्ण का गुणगान निकलते रहता है। तो एक और सीधे तरह से गोपियां कृष्ण का गुणगान सामाजिक दृष्टि से करना वो उनके लिए संभव नहीं था, और दूसरी तरह से स्वाभाविक तौर से अंदर से उनके लिए कृष्ण का गुणगान करना था। तो इन दोनों को कैसे मिलाया जाए? तो उन्होंने ठीक समझा कि थोड़े टेढ़े तरह से कृष्ण के बारे में बोला जाए, इसलिए ये परोक्षवाद कहा जाता है। और वैसे ये परोक्षवाद में ज्यादा आनंद इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण को आता है जब वो गोपियों के संबंध में, इसलिए है कि गोपियों के साथ में जो श्री कृष्ण का संबंध है उसको परकीय रस कहते हैं। परकीय रस मतलब विवाह के बाहर। और द्वारका में जो श्री कृष्ण का संबंध है उनके रानियों के साथ में, उसको स्वकीय रस कहते हैं, क्योंकि वो विवाह के भीतर है। अब इस संसार में स्वकीय संबंध, स्वकीय रस, ये नैतिक और ठीक माना जाता है। बराबर है ना? यही ठीक है, यही उचित माना जाता है। और अगर विवाह के बाहर कोई संबंध हो, मतलब परकीय संबंध, उसे अनैतिक माना जाता है, नीचा माना जाता है, कम से कम एक सभ्य समाज में। और ऐसे होना चाहिए मनुष्य समाज में। इसलिए भौतिक समाज में, भौतिक जगत में, मनुष्य समाज में स्वकीय रस को श्रेष्ठ माना जाता है और परकीय रस को श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इसको निम्न श्रेणी का माना जाता है, नीचा माना जाता है। लेकिन भगवद गीता से भी हम जानते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा है वो यहां नीचा है, वहां जो चीज नीचे है वहां यहां पर ऊपर है। कौन सा श्लोक है? ऊर्ध मूलमथ शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम्। कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है। जैसे एक अश्वत्थ वृक्ष नदी के तट पर स्थित होता है और जब उसका प्रतिबिंब हम जल में देखते हैं तो जल में प्रतिबिंब हमें कैसे दिखाई पड़ता है? उल्टा। वैसे तो एक वृक्ष के जड़ नीचे होते हैं और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, लेकिन प्रतिबिंब में उल्टा दिखाई पड़ता है। जड़ जो है वो ऊपर दिखाई पड़ते हैं और शाखाएं नीचे दिखाई पड़ती हैं। जो वहां उल्टा ऊपर है यहां नीचे, जो वहां नीचे है यहां ऊपर। तो उसी प्रकार से यहां पे जो सबसे नीचा माना जाता है परकीय, मतलब अविवाहित अवस्था, वहां पर सबसे ऊंचा है। और यहां पर जो अच्छा माना जाता है वो थोड़े निम्न श्रेणी का है, वहां पर स्वकीय। हमें ये याद रखना चाहिए कि वहां पे जो परकीय रस है भगवान के धाम में वो शुद्ध है, यहां की तरह अशुद्ध नहीं। यहां जब विवाह के बाहर कोई संबंध होता है तो वो अशुद्ध है, अनैतिक है, पाप होता है। और करने से कर्मों का फल बड़ा जबरदस्त मिलता है, इससे नरक लोक जाना पड़ता है। इसलिए हमारे संस्था में प्रभुपाद जी ने जो चार नियम बताए उनमें से एक कौन सा है? अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करना। तो हालांकि कृष्ण भगवान परकीय रस का स्वाद ले रहे हैं, हमारे लिए वैसी चीज करना ये तो महापाप है। कलयुग का एक लक्षण है कि ये चार नियमों को खुलेआम तोड़ा जाता है। तो मनुष्य समाज में अवश्य हमें इन चार नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए और अवैध स्त्री पुरुष संघ से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन जब हम सोचते हैं कि अगर श्री कृष्ण ऐसा कर रहे हैं तो वो भी पाप है, ये हमारी गलती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ जो भी होता है वो शुद्ध है, विशुद्ध सत्व के स्तर पे है। और ये आध्यात्मिक आनंद को लूटने की बात है, भौतिक सुख को नहीं, भोग को नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो शुद्ध ही है। और दूसरी बात यह है कि ये जो गोपियां हैं गोलोक वृंदावन में, जो कि विवाहित हैं और उनके पति वगैरह हैं, उनके सास हैं इत्यादि, ये सब केवल एक लीला है भगवान के परकीय रस के आनंद को बढ़ाने के लिए। वास्तव में गोलोक वृंदावन में कोई किसी का पति पत्नी नहीं है सिवाय कृष्ण। ऐसे देखा जाए तो ये केवल एक तरह का नाटक है, एक तरह की लीला है कि ये इनके पत्नी है, ये इनके बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन वास्तव में पति पत्नी के बीच में कोई संबंध नहीं। वास्तव में सारे गोपियों का विवाह श्री कृष्ण से हुआ है, लेकिन इसका आनंद पर की रस का स्वाद लेने के लिए वैसे श्री कृष्ण इनको गोपियों को विवाहित अवस्था में रखते हैं, ऐसे प्रतीत होता है भौतिक दृष्टि से। तो परकीय रस वैसे मनुष्य समाज में अच्छा नहीं है, इसलिए जो गोपियां हैं वो हिचकिचा रही थी कि हम ऐसे नहीं कर सकते, स्वकीय रस में जो चलता है जैसे कि द्वारका में वो ठीक है। इसलिए आमतौर से जिनको भक्ति के जो सूक्ष्म तत्वों का सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है वो कृष्ण के इन लीलाओं की निंदा करते हैं, या तो फिर वो द्वारका के लीला को ज्यादा पसंद करते हैं और सोचते हैं कि वृंदावन की लीला इतनी अच्छी नहीं है, इसमें बहुत गड़बड़ है। लेकिन जो रसिक भक्त होते हैं, वास्तव में जो तत्व को जानते हैं अच्छी तरह से, कृष्ण भगवान को के तत्व को जानते हैं, वो इस परकी रस को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। मतलब जिस चीज को मनुष्य समाज में सबसे नीचा माना जाता है उसको उन्नत भक्त जो कि सबसे शुद्ध हैं, काम वासना से पूरी तरह से मुक्त हैं, काम वासना की थोड़ा लेश मात्र भी प्रभाव उनके हृदय में नहीं है, ये लोग भगवान के रासलीला को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और रासलीला भी खास करके परकीय रस में उसको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसलिए गोपियां थोड़े टेढ़े ढंग से बोल रही हैं परोक्षवाद। परोक्ष का और एक भी अर्थ होता है प्राइवेटली, मतलब पब्लिक में जाके सबके सामने नहीं, अपने अपने निजी सखियों के संग छोटे छोटे दलों में। वैसे इतने छोटे नहीं हुआ करते थे, वृंदावन में बहुत सारे गोपियां हैं, लेकिन जो भी है अपने अपने समभाव की जो गोपियां हैं सखियां हैं उनके संग में। तो ये है तात्पर्य स्व सखीभ्य का और परोक्ष का। इस तरह से शुकदेव गोस्वामी अभी अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में वर्णन करने वाले हैं कि किस तरह से गोपियों ने श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में बातचीत करना आरंभ किया। तो आइए हम वर्णन करते हैं, यहां पर श्लोक है चौथा श्लोक। तद् वर्णयितुम् आरब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप कृष्ण के विषय में बातें करने लगी, किंतु जब उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण किया तो हे राजा, काम ने उनके मनों को विचलित कर दिया जिससे वे कुछ भी न कह पाए। तद् वर्णयितुम् आरब्धाः, जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी तो उन्होंने कृष्ण के बारे में बातचीत करना आरंभ किया, आरब्धा वर्णयितुम् वर्णन करना शुरू कर दिया। स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम्, और स्मरण करने लगे कृष्ण के लीलाओं को, कृष्ण के कार्यकलापों को। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था स्मर उदयम स्मरोदयम, कि उनके हृदय में कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर स्मर या आध्यात्मिक काम मतलब शुद्ध प्रेम जागृत हो गया। और अब हम पढ़ रहे हैं और ये सुन रहे हैं कि किस तरह से वो प्रेम का प्रभाव, उसका परिणाम क्या हुआ उनके हृदय के ऊपर। परिणाम क्या हुआ? स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम्, वो कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का स्मरण करने लगे। कैसे कालिया का दमन किया, कालिया के फणों के ऊपर सुंदर नृत्य करने लगे, कैसे उन्होंने पहले दावा नल को पी लिया, कैसे बलराम के साथ उन्होंने जाकर सारे गधों को जो असुर थे उनका वध किया, धेनुकासुर आदि। आगे चल के कैसे प्रलम्बासुर का वध हुआ, कैसे दूसरे दावा नल को कृष्ण पी लिए, कैसे हर रोज प्रातः काल को कृष्ण अपने गोपगण और ग्वाल और गायों को संग गायों के संग वन में जाते हैं, कैसे वो लौट कर आते हैं, ये सब चीजें गोपियां स्मरण करने लगी और तीव्र रूप से उनके हृदय में ये सारे स्मरण उभर आए। हालांकि श्री कृष्ण काफी दूर थे इस समय, कृष्ण भगवान तो वन में चले गए, लेकिन यहां गोपियां अपने गांव में अपने घरों में ये स्मरण कर रही हैं। कृष्ण की लीलाओं ने उनके हृदय में प्रकट किया है और अभी गोपियां कृष्ण के साथ हैं अपने हृदय में। कृष्ण और कृष्ण के लीलाओं में, कृष्ण के नाम में, उनके गुण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करता है या कृष्ण का नाम लेता है तो कृष्ण भगवान उसके साथ में ही है। भौतिक जगत में किसी वस्तु के नाम में और उस वस्तु में अंतर होता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर हम आम 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 बोलेंगे, आपो संभा बोलेंगे तो हमें आम का स्वाद नहीं मिलेगा, हमें आम लेना होगा, आम खाना होगा, तब हमें उसका स्वाद मिलेगा। लेकिन कृष्ण 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 कहने से तुरंत कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण का स्वाद आ जाएगा, क्योंकि कृष्ण में कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। ये है परम सत्य, एब्सोल्यूट, पूर्ण आध्यात्मिक। ये भौतिक दुनिया में सब द्वंद्व है, नाम में वस्तु में अंतर है, गुण में वस्तु में अंतर है, लेकिन भगवान के धाम में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हालांकि श्री कृष्ण बहुत दूर वन में चले गए थे, लेकिन गोपियों ने श्री कृष्ण को उनके हृदय में बांध के रखा था और इसलिए वो स्मरण करते रहे और स्मरण करते करते ऐसे उनका दिन बीत जाता था। इसलिए हमारे लिए ये आदर्श है, गोपियों ने एक स्टैंडर्ड, एक उदाहरण हमारे लिए पेश किया है सारे दुनिया के लिए, बल्कि सारे ब्रह्मांड के लिए कि भक्ति कैसे होनी चाहिए। हर एक कार्य में हर एक क्षण वो लोग कृष्ण का स्मरण करते थे। हाँ, गोपियां केवल ऐसे बैठी बैठी तो रहती थी बीच में, लेकिन आके घर में उनकी जिम्मेदारियां थी, अगर बैठ जाती तो घर के लोग चिल्लाते, अरे कुछ करो, ये देखो मक्खन कर निकालना है, बच्चों को खिलाना है पिलाना है। तो हालांकि स्वाभाविक तौर से जैसे कल वर्णन हो रहा था कि वो कभी यूं ही स्तब्ध बैठे रहते हैं जैसे कि भूत उनके ऊपर सवार हुआ है, लेकिन उनके कार्य भी उनको करने पड़ते और ये सब कार्य करते करते भी वो कृष्ण की बातचीत करते, कृष्ण का स्मरण करते। तो ये है आदर्श, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने इनका गुणगान इतना किया है। और यही भावना का रस, इसी भावना का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, ये समझने के लिए कि जो प्रेम गोपियों का है उनके प्रति, वे इतना शुद्ध, इतना निस्वार्थ प्रेम जो है, इसमें गोपियों को किस तरह का आनंद मिलता है, ये प्रेम की तीव्रता कितनी है, ये जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। मतलब स्वयं श्री कृष्ण को ये नहीं मालूम कि गोपियों को कितना आनंद आ रहा है इस प्रेम में, दिव्य आनंद। मतलब कृष्ण भगवान को जितना आनंद मिलता है गोपियों के प्रेम में, उससे ज्यादा गोपियों को मिलता है। ये है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों का गुणगान ऐसे किया है और कहा है, रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता, कि आज तक न किसी ने गोपियों की तरह भक्ति की है और न कर पाएंगे, गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। और फिर जैसे जैसे वो स्मरण करते हैं और वर्णन करने जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर स्मर वेगेन, फिर वो जो स्मर का, उनके शुद्ध प्रेम का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर क्या असर करता है, न अशकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसोन नृप। आचार्य बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति के हृदय में प्रेम रहता है, तीव्र प्रेम रहता है, तो कई तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। हम देखते हैं कि यहां भी संसार में जब किसी नव युवक और नव युवती के बीच में तथा कथित प्रेम होता है तो कई तरह के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। नींद नहीं आती है, ये सब गाने गाते हैं ना, गाने गाते हैं, कविता लिखते हैं, ये सब बड़े बड़े कवि जो है ना, ऐसे ही चीजों में एक कविता ऐसी लिखी है, जब रात को नींद नहीं आती है उसमें तो कविता लिखने बैठ जाते हैं और दूसरों का मन भी भ्रमित कर देते हैं। ये सिनेमा टीवी में क्या है, यही तो सब है, नींद नहीं आता और ये वो, जितने सारे लक्षण है हम देखते हैं। फिर खाना, भूख नहीं लगती, किसी में ध्यान नहीं लगता, हमेशा भ्रमित रहता है, ऐसे ऊपर देखते रहते हैं तारों में, चांद में, सब पागल जैसे हो जाते हैं। तो ये संसार का पागलपन भी इतना तीव्र हो सकता है, तो गोपियों के साथ में कैसे लक्षण प्रकट हुए होंगे हम कल्पना कर सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ऐसे 10 तरह के लक्षण होते हैं जिनका विकृत प्रतिबिंब हम संसार में देखते हैं, तो उनके शुद्ध रूप में ये तो बहुत तीव्र होते हैं, और आखिर में जो अंतिम जो लक्षण है वो है मृत्यु, मतलब जब बिल्कुल सहन ही नहीं कर पाते हैं, मृत्यु। लेकिन ऐसे कई चीजें होती हैं जैसे जिनका वर्णन हमने किया, तो ये सारे लक्षण गोपियों में प्रकट हुए थे। उनमें से दो लक्षण या एक लक्षण ऐसे है कि मन भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है। विक्षिप्त मनसो नृप, मन विक्षिप्त हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो गोपियों का मन भी इसी तरह से पूरी तरह से विचलित हो गया, चल विचल हो गया, उनको पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, कि क्या बोल रहे हैं, क्या, कुछ नहीं पता चला। और एक दूसरा लक्षण स्मर वेगेन, स्मर के वेग का, वो यहां पर बताया गया है, न अशकन। न अशकन मतलब नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, अभी अभी वर्णन किया है, तद वर्णयितुम आरब्धा, कि उन्होंने वर्णन करना श्री कृष्ण के बारे में आरंभ किया, लेकिन जैसे स्मर वेगेन, जैसे शुद्ध प्रेम का वेग हृदय में उभर आया, न अशकान, फिर वो ज्यादा वर्णन नहीं कर पाए। वर्णन कर रहे थे लेकिन फिर वर्णन करते करते जैसे कृष्ण का स्मरण और तीव्र हो गया तो वर्णन करना भी वो असमर्थ हो गए, वो भी नहीं कर पाए, मानो कि ऐसे उनके गले में वो वर्णन अटक गया। बोलना चाहते हैं लेकिन मन इतना विचलित हो गया कि वो बाहर नहीं निकले, शब्द सारे कंठ में अटक गए। इसको गदगद कहते हैं, गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाता है। हम हर रोज सुबह को चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत शिक्षा दी अपने भक्तों को, लेकिन निजी अपने हाथों से कुछ लिखा नहीं, केवल 8 श्लोक छोड़े चैतन्य महाप्रभु ने निजी के रचना, और वो है शिक्षाष्टकम। तो शिक्षाष्टकम में कौन सी प्रार्थना इस संबंध में हम सब गाएंगे साथ में? नयनम गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब मैं आपका नाम लेता हूं, नाम ग्रहणे भविष्यति, जब मैं आपका नाम लूंगा, तो कब वो दिन आएगा जब नयनम अश्रु धारया, जब मेरे आंखों से अश्रु धारा होगी, कब वो दिन आएगा जब मैं आपका नाम लूंगा तो क्या होगा, कंठ मेरा गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा, गलत अश्रु गदगद हो जाएगा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। ये भी अष्ट सात्विक विकार है, जब शुद्ध भक्ति किसी बहुत ही उन्नतिशील भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है तो ये विकार हो जाते हैं, जैसे कि पुलक खड़े होना, रोंगटे खड़े हो जाना, कंठ गदगद हो जाना, या पसीने छूट जाना, इस कंपन होना शरीर में, ऐसे सब चीजें होने लगती हैं। हम देखते हैं कि इसका विकृत रूप भी यहां संसार में दिखाई पड़ता है, जब कोई घबरा जाता है, घबराने के बाद कांपने लगता है, जब ज्यादा कोई भूत को देखता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे जो विकृत रूप यहां पर हम भी देखते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में ये भगवत प्रेम में दिखाई पड़ते हैं, और ये सब लक्षण पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। तो ये जो ऊंची भावना गोपियां व्यक्त कर रही हैं, इनके पद चिन्हों में चल के श्रीमद् भागवत के लीलाओं का श्रवण करके श्रद्धा पूर्वक हरिनाम संकीर्तन करके और नम्रता से भक्तों के संग में रहकर हम भी आगे चल के एक न एक दिन ऐसी ही भावनाओं को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। एक बार कई साल पहले एक दूसरे धर्म के प्रचारक हमारे पास आए थे और वो हमें उनके धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रचार कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि आपके धर्म में आप लोग कहते हैं कि आपको रोना चाहिए भगवान के लिए, ये क्या पागल जैसे हो जाना, ये क्या आपके धर्म का उद्देश्य है? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला वैसे भी लोग सब जगह पागल है, वो कितने चीज के लिए रोते हैं, हर एक आदमी रो रहा है कि नहीं? बचपन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक रोते रहता है। जब आदमी जन्म लेता है तो क्या करता है, रोते हुए आता है ना? और अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको मार के रुलाता है, बराबर है? रोते हुए आता है, रोते हुए जाता है, और बीच में भी रोते रहता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, है ना? तो वैसे भी आदमी रोते रहते हैं, लेकिन ऐसे रुदन से केवल दुख होता है। लेकिन भगवान के लिए रोना, शास्त्र बताते हैं, सबसे ऊंची स्तर है प्रेम की। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है जिसकी नकल हम कर सकते हैं, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे संस्थाएं हैं वृंदावन में भी, जो आदमी पहली बार आया उसको आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम, इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसको सीधा आके रुलाना शुरू कर देते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे कि ऐसे सब बनावटी नकली आंसू ये सारे वेदों के सिद्धांतों को धो डालते हैं। तो बिना उस स्तर को प्राप्त किए अगर कोई व्यक्ति यूं ही बस रोने बैठ जाता है तो हम समझ सकते हैं कि ये भक्ति के आंसू नहीं है, केवल उसके भौतिक भावुकता के आंसू है। केवल रोना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भाव हृदय में आना ये बड़ी बात है। और जब भाव आएगा तो स्वाभाविक तौर से ये लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो भावना है इसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि कि करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन किया है हम सबके लिए, कलयुग के जीवों के लिए। अगर हम सोचेंगे कि ये तो बहुत ऊंची बात है, हमारे लिए नहीं है, हाँ ऊंची बात तो है लेकिन हमारे लिए है। ये चैतन्य महाप्रभु का अनमोल भेंट है कलयुग के प्राणियों के लिए, कि कलयुग जैसे घोर अंधकार के युग में ऐसे पतित जीवों के लिए उन्होंने सबसे ऊंची गति प्राप्त करने का एक साधन दिया है। देखिए भगवान की कितनी असीम कृपा है हम सबके ऊपर। और इसलिए हम अगर ऐसे चीजों को अधिकृत परंपरा में आकर सुनेंगे तो हम भी धीरे धीरे से गोपियों के भाव को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं, आखिर में कहते हैं विक्षिप्त मनसो नृप, नृप मतलब राजा, वो परीक्षित महाराज से बात कर रहे हैं, तो कितने भाव विभोर हो जाते हैं सुखदेव महाराज ये वर्णन करते करते कि अपने भाव को रोकने के लिए फिर वो कहते हे नृप, भाव में कि हे राजन। ये गोपियां जो हैं जैसे जैसे वो कृष्ण के लीलाओं का स्मरण कर रही थी वैसे वैसे स्मर वेग से वो कुछ बोल नहीं पाई और वो स्तब्ध हो गई, मन में भ्रमित हो गई और इस प्रकार से वो चुप हो गई। तो हे नृप कह के सुखदेव गोस्वामी यह अपने आप को रोक लेते हैं। और फिर आगे चल के सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक का वर्णन करने वाले हैं। कोई उठाएंगे इस बोर्ड को, आप जरूर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बरहा पीड़म नटवर वपहु, बताया जाता है कि ये श्लोक श्रीमद् भागवत का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। जितना भी कुछ श्री कृष्ण का वर्णन कितने भी शास्त्रों में कहीं भी किया हो, आचार्यों का वर्णन है कि ये उनमें से सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। ये तो सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकला है, लेकिन वास्तव में भावना है गोपियों की, केवल सुख के मुखारविंद से आया है बस। तो ये श्लोक क्या है? ये गोपियों का ध्यान है। जब गोपियां ऐसे कृष्ण की बांसुरी सुन रही हैं, तो ये प्रश्न उठ सकता है कि उनके मन में ध्यान किस प्रकार का आया। तो उनके मन में ध्यान ऐसे आया, हम सुनने वाले हैं, और ये ध्यान क्या है? ये श्री कृष्ण के सौंदर्य का है, श्री कृष्ण के सुंदर गुणों का है, उनका वर्णन है। तो आइए ये श्लोक हम पढ़ते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णय कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम्। रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः। वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने अपने पद चिन्हों से वृंदावन को रमणीक बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी वंशी के छेद्रों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। तो ये श्लोक, जैसे कि हमने कहा, हालांकि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये गोपियों की हृदय की बात है। गोपियां अपने हृदय में ये दृश्य देख रही हैं, ये उनका ध्यान है। गोपियों का ध्यान योगियों के ध्यान की तरह नहीं होता है। योगी लोग ध्यान करते हैं या तो निराकार ब्रह्म के ऊपर, या तो अपने हृदय में स्थित परमात्मा के ऊपर, या तो किसी भी और विषय के ऊपर, लेकिन गोपियों का ध्यान ऐसा नहीं है। एक बार श्री कृष्ण ने अपने मित्र और अपने भक्त उद्धव को मथुरा से वृंदावन भेजा था, क्योंकि वो उद्धव को दिखाना चाहते थे कि गोपियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ है। और उद्धव जब वहां गए थे और उन्होंने सब ब्रजवासियों का प्रेम देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि यदुकुल के लोगों से बढ़कर कोई और कृष्ण के प्रेमी नहीं हो सकते हैं, और ये आसक्ति जो यदुकुल के लोगों में है ये बहुत ही श्रेष्ठ है। वास्तव में बताया जाता है, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों में से श्रेष्ठ प्रहलाद माने जाते हैं, प्रहलाद से भी बढ़कर पांडव हैं, पांडवों से श्रेष्ठ यदु हैं, यदुवंशियों से भक्तों से श्रेष्ठ है ब्रजवासी, और ब्रजवासियों में से सबसे श्रेष्ठ हैं गोपियां। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और ये देखकर उनका सर चकरा गया और उनको समझ में आया कि वास्तव में ये ब्रजवासी लोग और खास करके गोपी कितने महान हैं। और फिर उन्होंने सुंदर प्रार्थना की और इस प्रार्थना में उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि मेरी एक ही अभिलाषा है कि मैं वृंदावन में घास बन के पुनः जन्म ले लूं। ऐसी कोई प्रार्थना करते हैं? क्यों वो घास बन के जन्म लेना चाहते थे? क्योंकि वृंदावन के घास के ऊपर गोपियों के चरण कमल पड़ते हैं, तो वो सोचने लगे कि ये गोपियां इतनी महान हैं कि उनके चरणों की धूली मेरे सर पे पड़नी चाहिए, इसलिए मुझे घास का तिनका वृंदावन में बनना चाहिए। ये भक्त की भावना होती है। भक्त हमेशा निम्न श्रेणी का रहना चाहता है। उद्धव ने ऐसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, नहीं की थी कि मुझे गोपियों का लीडर बनना है, सबसे श्रेष्ठ गोपी बनना है, नहीं, ऐसे नहीं प्रार्थना की। मुझे गोपियों की चरण धूली चाहिए, और वो कैसे मिलेगी? जब मैं एक घास का तिनका बन जाऊंगा। और उद्धव ने इनको सब देख लिया और उन्होंने कृष्ण का संदेश भी उनको दिया। अब उद्धव की परिस्थिति ऐसे थी कि कृष्ण ने उनको सांत्वना देने के लिए भेजा था ब्रजवासियों को, तो उद्धव का काम था ये करना, उनका कर्तव्य बद्ध थे कि गोपियों को कहो कि मत रहो, क्योंकि गोपियां तो दिन भर रोती रहती थी कृष्ण के विरह में। और दूसरी बात, उद्धव शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रों में बताया है कि कृष्ण के लिए रोना चाहिए, तब क्या किया जाए? शास्त्र भी कृष्ण के वचन है। एक और कृष्ण ने कहा है कि उनको सांत्वना दे दो, मतलब वो रो रहे, वो दुखी है, उनको दुख कम करो, तो उनका काम था कि उनको रोना बंद करना। दूसरी ओर शास्त्र कहते हैं भाई कृष्ण के लिए रो रहे हैं, जीवन की संसिद्धि प्राप्त कर ली है, अब उनको रोना क्यों बंद कर रहे हो? तो इसलिए उद्धव बड़े भ्रम में आ गए थे। तो खैर, उद्धव ने उनको थोड़ा कुछ उपदेश भी दिया था कि कैसे भगवान के ऊपर ध्यान करो, ऐसे करो वैसे करो। और फिर आगे चल के जब भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय द्वारका से कुरुक्षेत्र गए थे, उस समय ब्रजवासी भी वहां पहुंच गए थे, और बहुत सालों के बाद श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से वो फिर से मिले, और उस समय फिर से श्री कृष्ण थोड़ा बहुत योग के बारे में उनको बोल रहे थे उनका मन शांत करने के लिए। उस समय श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों ने कहा कि देखो श्री कृष्ण, पहले तुमने उद्धव को भेजा और अब तुम खुद आके ये सब योग ज्ञान ध्यान ये सब बात कर रहे हो, ये सब हमारे बस की बात नहीं, ये सब हमसे नहीं होना है, हम तो ध्यान करते हैं तुम्हें भूलने के लिए, योगी लोग ध्यान करते हैं तुम्हें याद करने के लिए, हम तो ध्यान करते हैं तुम्हें भूलने के लिए, तो ये सब ध्यान योग वोग हमारे लिए नहीं होगा, तो ऐसे उपदेश हमको देकर हमारे हृदय और दुखी मत करो। योगी लोग ध्यान क्यों करते हैं? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगी लोग ध्यान करते हैं या भक्त लोग भी ध्यान करने का प्रयास करते हैं कृष्ण का स्मरण करें। हम जब भी करते हैं तो क्यों करते हैं? कि कृष्ण का नाम सुनना चाहे, लेकिन नींद आ जाती है, मन भटक जाता है, कितना संघर्ष होता है। तो ये बद्ध जीवों का संघर्ष क्या रहता है? कि कृष्ण को मन में लाना, कृष्ण मन में आते हैं तो माया कृष्ण को निकाल देती है और माया मन में भर जाती है। घर में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, पड़ोस में क्या हुआ, कल क्या करना, आज क्या करना, उसने मुझसे क्या कहा, मैं उसको क्या कहूंगा, सब मन में आते रहते हैं। जप के समय अन्य नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं। तो यहां संसार में बद्ध जीवों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है कृष्ण को मन में लाने के लिए, लेकिन गोपियों को संघर्ष करना पड़ता है कृष्ण को मन से निकालने के लिए। दोनों असफल हो जाते हैं। बद्ध जीव भी असफल होता है कृष्ण को अंदर लाने के लिए, और गोपियां भी असफल होती हैं कृष्ण को बाहर निकालने के लिए। ये देखिए अजीब परिस्थिति है, दोनों दुखी है। बद्ध जीव भी जो साधक भक्त होता है वो भी निराश हो जाता है। अरे जप में कितने भक्त कभी कभी निराश हो जाते हैं, मुझे नींद क्यों आती है, मैं जप करता हूं क्यों मेरा मन भटक जाता है। भक्त भी निराश और उधर वो गोपी भी निराश, सोचते हैं ये तुम्हारा स्मरण करके हमें मिला क्या है, केवल तुम हमको छोड़ के चले गए, और छोड़ने के बाद भी दिन रात तुम्हारी याद ही हमको सताती है, दिन रात तुम्हारा स्मरण हम करते बैठते हैं और केवल दुख ही दुख मिलता है हमको। दुख तो क्या, वो आध्यात्मिक आनंद का सर्वोच्च शिखर है वो, लेकिन फिर भी विरह है, ये एक प्रकार का आध्यात्मिक दुख है। तो गोपियों का जो ध्यान है, जो इस श्लोक के ऊपर ध्यान, इस वर्णन के ऊपर ध्यान कर रहे हैं अपने मन ही मन में, वो ऐसा ध्यान नहीं है। गोपियों का ध्यान तो उनके स्वाभाविक और तीव्र शुद्ध प्रेम का एक स्वाभाविक परिणाम है, नेचुरल रिजल्ट हो रहा है उनके हृदय से। जैसे प्रेम है वो चिंतन मनन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और कृष्ण के बारे में ऐसे सुंदर सुंदर विचार वगैरह आने लगते हैं। और क्योंकि यहां पर कृष्ण के बारे में इतने सुंदर ढंग से वर्णन है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ श्लोक माना जाता है कृष्ण का स्मरण करने के लिए। अगर हमें कृष्ण का स्मरण करना है तो इस श्लोक से सीखना चाहिए कि कैसे कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इसलिए हमें सब ये श्लोक कंठस्थ करना चाहिए। आप प्रयास करेंगे, ये श्लोक सब लिखेंगे, या जिनके पास भागवत का किताब घर में है तो याद रख लीजिए, 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो इस श्लोक में बताया क्या गया है, सबसे पहले वरहा अपीडम, वरह मतलब मोर पंख, अपीडम मतलब एक आभूषण, और ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला आभूषण है। तो इस श्लोक में हम देखने वाले हैं कि भगवान के ऊपर से सर से लेकर नीचे उनको चरण कमलों तक वर्णन है, अलग अलग अंगों का। अब कैसे हम देखते हैं, सबसे पहला ऊपर से सबसे शुरू, सबसे ऊपर का हिस्सा कौन सा होता है भगवान के, मोरपंख। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ऐसा मोरपंख पहनते हैं। कई दिन पहले हमने चर्चा की भगवान श्री कृष्ण को ये मोरपंख कैसे मिला, मोरों के बीच में जाकर वो नृत्य करने लगे और मोरों से भी अच्छा नृत्य करने लगे, मोर बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने खुशी से उनका मोरपंख भगवान को भेंट कर दिया। वैसे कई लीलाएं हैं, ये एक लीला है, कई अन्य लीला भी हैं, भगवान की अनंत लीला है जिनसे कि वो उनको मोरपंख मिला, लेकिन उनमें से ये एक लीला है। तो ये मोरपंख के 7 रंग होते हैं, अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं मोरपंख में, अगर ध्यान से आपने मोरपंख को देखा होगा तो। और ये भगवान कृष्ण के पगड़ी को या उनके मुकुट को या उनको बालों को सुशोभित करता है। जिस तरह से मोरपंख के 7 रंग होते हैं, उसी तरह से और किस वस्तु के 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष, बहुत अच्छा, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं सुंदर से। और इंद्रधनुष कौन से मौसम में दिखाई पड़ता है, बरसात में। बरसात में आकाश में क्या दिखाई पड़ता है, बादल, बादल दिखाई पड़ते हैं ना, तो बादलों का रंग क्या होता है, काला। तो जिस तरह से 7 रंग वाला मोरपंख कृष्ण के सांवले शरीर, सांवले रंग के मुखारविंद पे सुशोभित है, उसी तरह से इंद्रधनुष बादलों के समान दोनों बराबर के दिखते हैं, सात रंग काला काला सांवला सांवला यह सुंदर। और जैसे बरसात के मौसम में बादलों के बीच से क्या चमकता है, बिजली। बिजली का रंग क्या होता है, सोना। सोने का रंग स्वर्ण रंग का होता है बिजली। तो उसी प्रकार से भगवान का पीतांबर, इसलिए यहां पर क्या बताया गया है, विभ्रत मतलब पहनना, वास कपड़े, कनक कपिशम, कनक मतलब स्वर्ण, कपि कपि का रंग कैसे होता है, पीत रंग का, पीले रंग का। तो भगवान का पीतांबर वो भी सोने से भी ज्यादा सुंदर है, बिजली के रंग का है। तो कृष्ण का मोर पंख उनके सुंदर सांवले मुखारविंद पर, उनके सुंदर सांवले शरीर के ऊपर, और साथ साथ जो उनका पीतांबर है वो ऐसे लगता है जैसे कि इंद्रधनुष काले बादलों में छाया हुआ है और साथ बिजली चमक रही है। तो ऐसा सुंदर दृश्य गोपियां अपने मन में देख रही है। और साथ साथ फिर क्या है, नटवर बरहा पीड़म नटवर, नट मतलब नृत्य करने वाला, वर मतलब श्रेष्ठ, नटवर मतलब सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने वाला। भगवान श्री कृष्ण के कौन से नृत्य के बारे में आप जानते हैं, काल्या के ऊपर नृत्य किया, और कहां नृत्य किया, रासलीला में नृत्य किया, और कहां मोरों के साथ जब जंगल में जाते थे अपने मित्रों के साथ। तो श्री कृष्ण हमेशा नृत्य करते हैं सुंदर ढंग से। शिवजी को क्या कहते हैं, नट राज, नाच करने वाले से राजा है वो। क्या कौन सा नृत्य करते हैं शिवजी, तांडव नृत्य। तांडव नृत्य के बाद क्या होता है, प्रलय हो जाता है, सारा सृष्टि का संहार हो जाता है। तो शिवजी नटराज हैं, गंधर्व गंधर्वों को भी नटराज कहते हैं, लेकिन कृष्ण नटवर है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने वाले। वर का शब्द, वर का अर्थ वो और भी हो सकता है, जैसे कि एक जिसके शादी होने वाला है, हिंदी में वर कहते हैं ना, वर जिसकी शादी होने वाली, ब्राइड ग्रूम। तो जिस लड़के की शादी होने वाली है उसको वर कहते हैं, और वर को भी सजाया धजाया जाता है ना, घोड़े पे बिठाते हैं, बैंड बाजा होता है, ये वो। वैसे भारत में अगर कोई भी कुरूप, कितना भी कुरूप आदमी क्यों ना हो, लेकिन शादी के दिन वो बढ़िया दिखता है ना, नाना प्रकार की चीजों से उसको सजाते हैं, धजाते हैं, गहने सूट बूट ये वो मुकुट वगैरह वगैरह पहनाकर उसको एकदम सुंदर बना देते हैं। तो कृष्ण भगवान तो पहले से सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सर्व आकर्षक कृष्ण सबसे सुंदर। उनके सौंदर्य का थोड़ा वर्णन भी पहले हम कर चुके हैं, पहले से इतने सुंदर, और उसके ऊपर जब वो ऐसे सुंदर कपड़े पहनते हैं और आभूषण इत्यादि ग्रहण करते हैं तो और कितने सुंदर लगते हैं। नट, नट का मतलब यह भी है एक नृत्य करने वाला, मतलब जो एक्टर डांसर। और ये जब हमारे पारंपरिक जो फोक आर्टिस्ट होते हैं, जो जैसे यक्षगान ये वो बहुत सारी चीजें होते हैं ना फोक डांसिंग, तो कैसे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं। और ये यात्रा वगैरह हमारे देश में जगह जगह होते हैं, प्राचीन काल से चलते हैं पारंपरिक जो नाट्य के पद्धति है उसमें जो लोग एकदम रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं, तो कृष्ण भगवान ने भी ऐसे कपड़े धारण किए, नट की तरह लग रहे हैं, और उनका सौंदर्य कहीं ज्यादा अभी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान अभी नटवर के समान उनको दिखाई पड़ रहे हैं, और नटवर इसलिए भी वो भी एक चल रहे हैं इस तरह से अपने कपड़ों के, अपने सौंदर्य के, अपने बांसुरों के गर्व को लेकर। और चलते चलते कैसे चल रहा है, जैसे मानो कि इन चीजों से उन्मत्त हो गया है, एक उन्मत्त हाथी कैसे चलता है वैसे श्री कृष्ण चल रहे हैं उन्मत्त हाथी के बराबर। तो गोपियां ये सब मन में देख रही हैं कि श्री कृष्ण ने मोर पंख लगाया हुआ है और नटवर की तरह कपड़े पहने हैं और आगे चल रहे हैं, पीतांबर है, वपुह उनका शरीर दिव्य है, सुंदर देह है उनका, नटवर वपुह। और जैसे वपु अपने शरीर को हिला रहे कैसे, ऐसे उन्मत्त हाथी चल रहा है। कर्णयोः कर्णिकारम्, कर्णिकार एक प्रकार का कमल पुष्प रहता है, वैसे तो ये पीला रहता है लेकिन भगवान यहां जो पहनते हैं वो नीले रंग का कर्णिकार पहनते हैं। और भगवान अपने कानों में, एक कान में वो ऐसे फूल डालते हैं, क्योंकि वो अभी अपने युव अवस्था के या अपने उस उम्र के उत्साह को या उसके नशे को पेश करना चाहते हैं। यहां से यहां यंग लड़के कभी कभी थोड़ा फैशन लगाना चाहते हैं कुछ ऐसे, जैसे पुराने जमाने में कॉलर ऊपर करना या ऐसे करना, आज यंग लड़के वगैरह स्टाइल लगाते हैं, वो ये विकृत प्रतिबिंब है। असली तो क्या है, स्टाइल भगवान श्री कृष्ण का है। जैसे सिनेमा में लोग हीरो हीरो वगैरह अपने अपने उनके ये रहते हैं ना, स्टाइल रहता है, हर एक का पहचान रहता है, लेकिन भगवान ये सब प्रतिबिंब है। असली हीरो कौन है, असली नायक कौन है, श्री कृष्ण। उनके पास वो अलग अलग चीजें पहनते हैं, मोरपंख है तो कभी कानों में एक फूल ऐसे डाल के जाएंगे। यहां कर्णयोः शब्द का प्रयोग किया जाता है, कर्णयोः मतलब द्विवचन, तो दोनों कानों में नहीं पहनते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते एक कान में पहनते, लेकिन कभी दाएं कान के ऊपर कभी बाएं कान के ऊपर। इस प्रकार से कर्णयोः कर्णिकारम्, ये सब भगवान श्री कृष्ण के आभूषण हैं। और फिर आगे बिभ्रत वासः कनक कपिशम्, तो भगवान श्री कृष्ण का पीताम्बर भी बहुत सुंदर है। वैजयंती च मालाम्, और भगवान श्री कृष्ण की माला का नाम क्या, फूल की माला, वैजयंती माला। और ये वैजयंती बहुत सुंदर माला है, वन के फूलों से बना हुआ है। इस वैजयंती माला में पांच प्रकार के फूल होते हैं, पांच प्रकार के अलग अलग रंगों के, बड़े सुंदर। और भगवान ऐसी माला पहनते हैं इसलिए उनका नाम है, क्या है नाम उनका, नाम भगवान का नाम क्या है, वनमाली, वनमाली। घन श्याम सुंदर श्रीधरा, है ना वो गाना, वनमाली उसमें आता है ना, हा? तो वनमाली भगवान श्री कृष्ण वनमाली है, क्योंकि वो वैजयंती माला पहनते हैं। और वैजयंती माला में तुलसी मंजरियां भी हैं, और उनके सुगंध से और इन फूलों के सुगंध से भौरे हमेशा के वहां पे भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमर वहां आते हैं। और क्योंकि ये भी पांच से सात प्रकार के रंग हैं, ये भी एक तरह के इंद्रधनुष के बराबर है। तो कृष्ण भगवान के दिव्य शरीर के ऊपर हम देखते हैं कि दो प्रकार के आभूषण हैं, जिससे कि वो ऐसे लगता है कि वो बादल के समान है, बरसात के बादल के समान। तो ये है वैजयंती माला, ये गले में लटके हुए होते हैं और घुटनों तक पहुंचते हैं, लंबी माला होती है ये। और फिर रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन, वैसे अपनी वेणु में रंध्र, ये शब्द का अर्थ होता है जो छेद होते हैं वेणु के भीतर। रंध्रान वेणोर मतलब अपनी वेणु के छेदों में वो क्या करते हैं, अधर अपने अधरों से, अपने होठों से सुधा, सुधा मतलब अमृत, अपूरयन मतलब भर देते हैं। वैसे तो ये बांसुरी खाली है, कुछ नहीं है, कल हम चर्चा कर रहे थे ना, ये खाली है, खोखला है, लेकिन फिर भी भरा हुआ है, किससे, अमृत से। वो अमृत कहां से आती है, कृष्ण के अधर से, कृष्ण के होठों से। कृष्ण की बांसुरी ये एक बांस, ये बांस से बनाया जाता है, बंबू से, और वृक्ष का एक जो हिस्सा रहता है उसको पर्व कहते हैं। लेकिन ये पर्व जो है अनेक पर्वों का उद्गम है, पर्व मतलब उत्सव, ये भी होता है ना पर्व का मतलब। तो ये जो पर्व से निकलता है ये बांसुरी, अनेक पर्व पैदा कर देता है, खास करके गोपियों के लिए। गोपियों के लिए 24 घंटे का पर्व है परवाणी, तो एक उत्सव है उनके लिए। तो बांसुरी नाना प्रकार के उत्सवों का कारण है। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने अधर से वो अमृत उसमें भर रहे हैं। और ये बांसुरी जो है इस अमृत को पूरी तरह से रख नहीं पाता, और फिर क्या होता है उससे वो अमृत उभर आता है, बाहर निकलता है। किस रूप में? सुंदर ध्वनि के रूप में, वो संगीत के रूप में। फिर वही संगीत निकलता है, सारे ब्रह्मांड भर घूमता है वो ध्वनि भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी का, कि कौन योग्य व्यक्ति है, कौन सा हृदय योग्य है मुझे प्रवेश करने के लिए। जगह जगह ढूंढता है, सबको प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी किसी के हृदय में तीर नहीं जाता। इस सारे ब्रह्मांड के आवरण को छाद छेद करके वो जाता है ब्रह्म ज्योति में, वहां भी कोई नहीं मिलता। इस यहां पर स्वर्ग लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, सब जगह जाता है, कोई नहीं मिलता योग्य व्यक्ति। फिर वैकुंठ लोक में जाते हैं, वैकुंठ लोक में भी कोई नहीं। वहां से अयोध्या, फिर वहां से द्वारका, वहां भी कोई नहीं। गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन में इतने शुद्ध भक्त हैं, इतने गोप हैं, वरिष्ठ गोपियां हैं, गाय हैं, फिर भी नहीं। लेकिन आखिर में जाके गोपियों तक पहुंचते हैं, फिर गोपियों के पास में जाकर सीधे उनके कानों से उनके हृदय में पहुंच जाते हैं। तब जाकर वो वाणी संतुष्ट होती है कि हाँ, अभी मैं एक योग्य स्थान प्राप्त कर चुका हूं। और गोपियों के हृदय में जाकर पूरा वहां मंथन करके स्मरवेगेन, फिर उनके हृदय में उत्पाद कर देता है ये वेणु का गीत। तो ये वेणु जो है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण अमृत भरते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं। क्यों? हमेशा उनके साथ में रहते हैं, सुहृद। जहां भी श्री कृष्ण जाते हैं वहां बांसुरी साथ में है। गायों को चराने ले जाते हैं, यहां अपने पट्टे के अंदर बांध के जाते हैं। एक बगल में आपने देखा होगा श्री कृष्ण अपना मंद घोष जो बाजा है वो लटकाते हैं, और जो पट्टा बांधते हैं, एक ओर गाय चराने की छड़ी और दूसरी ओर बांसुरी, ऐसे बांधते हैं अपने कमर और उस पट्टे के बीच में। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने वस्त्रों को पहनते हैं। वैसे ये बांसुरी किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं भगवान? जब वन में होते हैं तो गायों को बुलाने के लिए, जब वन में जाते हैं तो अपने मित्रों का मनोरंजन करने के लिए, जब वन में होते हैं तो जो वन के निवासी हैं जैसे पेड़ पक्षी पौधे, उनके प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, जब वन में जा रहे होते हैं तो गोपियों को, ब्रजवासियों को शांत करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, और जब वो लौट कर आते हैं वन से, तब अपनी घोषणा करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में आता है ना, और अपने बिल्डिंग में आ जाता है, तो फिर हॉर्न मारता है ताकि अपने परिवार के वालों को समझ जाए कि मैं आ गया। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान जब जंगल से वापस लौट के आ रहे हैं तो बांसुरी बजाते बजाते आते हैं, ताकि घोषणा हो जाए, सब जगह बात फैल जाए ब्रज में कि कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में आ रहे हैं। जैसे कोई महाराज आता है तो जाता है ना, महाराज आदिराज आ रहे हैं, तो ऐसे कृष्ण की बांसुरी वो काम करती है, लेकिन बहुत मधुर ढंग से। फिर गोपियों को, ब्रजवासियों को पता चलता है कि कृष्ण आ रहे हैं, सब सब अपने अपने जगह बाहर निकलते हैं। थोड़े गोपियां अपने घर के ऊपर जो छत रहता है उसमें एक कमरा रहता है जिसको चंद्रशालिका कहते हैं। चंद्रशालिका इसलिए बताई गई है, वो बनाई जाती है कि लोग अपने अपने छत के ऊपर जाकर देख सकें कि दूरी में क्या है, जैसे गाय वापस आ रहे हैं कि नहीं, तूफान आ रहा है कि नहीं, कोई खतरा है कि नहीं, इसके लिए ये सब बनाई जाती है। तो जैसे ही कृष्ण की बांसुरी आवाज की आवाज आती, जब कृष्ण लौट रहे हैं, तो तुरंत सारे ब्रजवासी बाहर आते, और खास करके गोपियां जाके अपने चंद्रशालिकाओं में बैठती, खिड़कियों में जाके देखती हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। लेकिन और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है भगवान के बांसुरी से, और वो है ब्रह्मा जी के संबंध में। किसी को मालूम है ब्रह्मा जी के संबंध में? ब्रह्मा जी और बांसुरी का संबंध क्या है? उनको दीक्षा दी भगवान ने बांसुरी से, ऐसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं, वो बांसुरी की ध्वनि निकलती है सुंदर ढंग से, और जब ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश करता है तो ओमकार के रूप में प्रवेश करता है, और वही फिर अंदर जाके जब ब्रह्मा जी के मुख से निकलता है गायत्री मंत्र के रूप से निकलता है। फिर ब्रह्मा जी की दीक्षा भगवान के बांसुरी से हुई, और ब्रह्मा जी पहले ब्राह्मण है इस सारे ब्रह्मांड के, और उनके गुरु कौन है? स्वयं भगवान। जैसे दीक्षा के समय गुरु अपने शिष्य के कान में मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उच्चारण किया लेकिन बांसुरी के माध्यम से, बांसुरी के ध्वनि में, ओमकार में, गायत्री मंत्र में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में, उनके गुणगान में कोई अंतर नहीं है। तो प्रश्न ये उठ सकता है, फिर हम हरे कृष्ण मंत्र क्यों बोले, हम ओमकार क्यों नहीं बोल सकते, हमें केवल ओमकार का जप करना चाहिए? कोई बता सकते हैं हमें क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? एक बात तो है लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दूसरी बात शास्त्रों में लिखा है, ठीक है, और क्या, अलग अलग कालों में, समय में अलग अलग मंत्रों का उच्चारण का की पद्धति बताई जाती थी, बराबर है, क्योंकि गुरु ने कहा, गुरु ने कहा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और क्योंकि इसमें राधा कृष्ण की प्रार्थना है, ये ज्यादा पर्सनल है, ज्यादा निकट है भगवान के। ओमकार भी भगवान का को संबोधित करता है, लेकिन उसमें इतना पर्सनल, इतना व्यक्तिगत एक भाव नहीं आता भगवान के प्रति, कि भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका रूप क्या है, उनका नाम क्या है, ऐसे नहीं आता। जैसे हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं महाशय, सर, साहब, ये भी उस व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम से बुलाएंगे तो वो ज्यादा निकट का है ना, है कि नहीं? ठीक उसी तरह से जब ओमकार है वो ऐसे है कि मानो भगवान को हम कह रहे हैं साहब, सर, लेकिन हरे कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी और कृष्ण मतलब स्वयं परम सत्य, तो हरे कृष्ण ये एक निकट का संबोधन है भगवान का, प्रेम का संबोधन है। जब हम सर कहते हैं तो उसका मतलब है हमारा संबंध उतना निकट नहीं है उस व्यक्ति के प्रति। जैसे कोई राजा है, उसके मंत्री या उसके जो भी प्रजा है वो उनको साहब या महाराज वगैरह कह के पुकारेंगे, लेकिन उसका छोटा बच्चा उसको महाराज नहीं बोलेगा, वो उसको कंधे पे चढ़ के बैठ जाएगा, है ना, राजा हो कोई भी हो, निकट का संबंध है। तो ठीक उसी तरह से जब ओमकार इत्यादि है, ये थोड़ा दूर का संबंध है, थोड़ा ऐश्वर्य भाव में संबंध है, और इसमें, इस ओमकार शब्द में भगवान के व्यक्तित्व का, भगवान के रूप का, उनके गुणों का इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हालांकि ओमकार भी भगवान से अभिन्न है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के नाम में जो निकटता है वो ओमकार में नहीं है, और क्योंकि निकटता है इसमें रस है जो कि ओमकार के जप में नहीं है, और इसलिए जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है वो ओमकार का भी जप ऑटोमेटिक कर लेता है, गायत्री मंत्र भी कर लेता है, इसमें सब आ जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है हमें समझना चाहिए कि सारे मंत्र उसमें आ गए, जितने भी सारे मंत्र हैं वो सब आ गए उसमें। इस तरह से ब्रह्मा जी की जो दीक्षा मिलने की पद्धति, वो कृष्ण की बांसुरी वो भी, और इन सारे मंत्रों में, महामंत्र में इत्यादि कोई अंतर नहीं है। ये है बांसुरी का कमाल। इस तरह से बांसुरी बजाते बजाते भगवान श्री कृष्ण ने सारे गोपियों का मन हरण कर लिया, और फिर आगे वृंदारण्यम सपद रमणम, ऐसे अपने चरण चिन्हों से वृंदावन के भूमि को सुशोभित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह सब जगह दिखाई पड़ते थे वृंदावन में। संक्षेप में हम पिछले 2-3 दिनों में एक बार चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण इतने हजारों गायों को, लाखों गायों को ले जाते हैं जंगल में, जो गायें सब जगह चलती हैं, वृंदावन में इतने सारे पशु हैं, पवन है, पक्षियां हैं, तो ये पद चिन्ह मिट क्यों नहीं जाते भगवान के, अभी तक कैसे वहां पर रहते हैं? जहां भी हम लोग चलते हैं हमारे पद चिन्ह होंगे तो वो तो मिट जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन वृंदावन के जो जंगल में जो भगवान के पद चिन्ह हैं वो क्यों नहीं मिट जाते? पृथ्वी माता उनको बता धारण करती है, लेकिन ऊपर से कोई जाएंगे तो पृथ्वी माता क्या कर सकती है? नहीं, लेकिन अगर गाय आए, कोई गाय आकर कोई धूल उड़ा दे, उसके ऊपर धूल गिर जाएगा गाय के पैर के इससे चरणों के प्रभाव से। हाँ, सारे ब्रजवासी पशु पक्षी प्राणी गाय ग्वाल बाल जो भी बड़े सावधानी से चलते थे। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि एक बार सभा हुई, सारे जो गोपगण हैं और सारे जो बच्चे हैं और पशुओं के साथ में, सबने निर्णय लिया कि जहां भी श्री कृष्ण के चरण कमल हैं वहां से हट के जाएंगे, वहां उसके ऊपर से नहीं जाएंगे। सारे पक्षी प्राणी पशु सब लोग कृष्ण के चरण कमल से दूर ही जाते हैं, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल वहीं पर रहें, क्योंकि ये सबसे अच्छे आभूषण है पृथ्वी माता के लिए, वृंदावन के लिए। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, इसलिए उनके स्वपद वृंदावन के चिंतामणि धाम को सुशोभित करते हैं। वैसे भी वृंदावन चिंतामणि धाम है, चिन्मय है, और उसके ऊपर भगवान के पद चिन्ह, तो ये और भी सुंदर हो जाता है। भगवान के पद चिन्ह यहां पे हम देख सकते हैं, इसके बाद में प्रवचन के बाद में ये किताब आप सब देख सकते हैं, लेकिन लौटाइए बाद में, घर लेकर मत जाइए, हमको वापस दे दीजिए। यहां पर आपको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल दिखाई पड़ते हैं कि कैसे हैं, बाद में ये आप सबके बीच में देंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं कौन से तरह तरह के चरण कमल के चिन्ह यहाँ पे भगवान के चरण कमल पे हैं। अब आप जानते हैं कि भगवान के अवतार को मानने के लिए कई तरह के लक्षण होने चाहिए, है ना? उनमें से एक ये है कि उनके हस्त कमलों में और उनके चरण कमलों में ऐसे कोई चिन्ह होने चाहिए जिनसे हम जान सकते हैं कि ये भगवान है। अगर वो नहीं है तो हम जान सकते हैं कि वो भगवान के अवतार नहीं हो सकते। और कौन से लक्षण है भगवान के अवतार को पहचानने के लिए? शास्त्र में उनकी भविष्यवाणी होनी चाहिए, केवल वर्णन नहीं, भविष्यवाणी पहले से उनके बारे में बताया हुआ होना चाहिए। और दूसरा, ऐसे कोई अद्भुत कार्य करने चाहिए जो कि साधारण या असाधारण मनुष्य भी नहीं कर पाए, जैसे कि गोवर्धन उठाना और विश्वरूप दर्शन। विश्व और एक पॉइंट हो गया, और एक तीसरा पॉइंट क्या है? नाक के ऊपर नृत्य किया, यह भी एक अद्भुत कार्य है, दूसरे कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। और तीसरा लक्षण क्या है अवतार को समझने के लिए? विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप का दर्शन कराना चाहिए, तब हम मान सकते हैं। और ये चौथा लक्षण है कि उनके पद चिन्हों में ऐसे लक्षण या निशानी होने चाहिए। तो श्री कृष्ण के ये लक्षण थे, अक्रूर ने देखे थे, कल हम चर्चा कर रहे थे। अक्रूर ने इन पद चिन्हों को देखकर वो उद्दीपन मतलब उनके हृदय में तीव्र प्रेम जागृत हो गया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी माता को धन्य किया। आगे चल के गोपियां इन चीजों के बारे में चर्चा करने वाली हैं, स्तुति करेंगे। जब ये जो पद चिन्ह है कैसे पृथ्वी माता पर लग सकते हैं? जब वो खाली पैर चलते हैं तब ना, उस समय क्या भगवान श्री कृष्ण को जूते चप्पल पहनते थे? नहीं, क्यों नहीं पहनते थे? इसके बारे में माता यशोदा बड़ी चिंतित रहती थी। सबसे पहले तो माता यशोदा कृष्ण को बोलती थी कि अरे कृष्ण, ये देखो वृंदावन में कितनी गर्म रेती होती है दोपहर के समय, वो भी गर्मी के समय, और वहां पे कितने सारे कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, तुम्हारे पैरों को चुभेंगे, और तुम तो इतने छोटे छोटे बच्चे हो, बालक हो, और वैसे भी हमारे पास कितने सारे ग्वाले हैं जो कि गायों को चरा के ले जा सकते हैं, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है वहां पर? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहां जाने के लिए। तो कृष्ण भगवान बोलते थे कि नहीं देखो माँ, हम लोग गोप जाति के हैं, हम लोग वैश्य हैं, हमें को अपना काम करना चाहिए, अपना स्वधर्म करके ही हम जीवन की संसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मुझे जाना चाहिए। लेकिन और भी कारण क्या थे, जैसे हमने पहले चर्चा की थी दो दिन पहले, नहीं, गायों को आनंद देना, ग्वाल बालों को आनंद देना, खुद सख्य रस का स्वाद लेना, और ब्रजवासियों को विरह में आनंद देना, ये सब चीज करना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए फिर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो जाना चाहिए, खुद जाके गायों को चराना चाहिए। फिर माता यशोदा कहने लगी, नहीं नहीं देखो ठीक नहीं है, दूसरों को भेजेंगे, अरे चप्पल तो पहनो, छतरी तो लेकर जाओ, कुछ तो करो, तुम चप्पल भी नहीं पहनते हो। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, जब गाय नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूं, हम तो ग्वाले हैं और ग्वाल बालों की जो पद्धति है, प्रथा है, उसका पालन हमें करना चाहिए। तो हमारे 9 लाख गायों को पहले आप चप्पल पहनाओ, जो अच्छे अच्छे बूट पहनाओ बाटा कंपनी के, फिर हम चलेंगे साथ में, हम भी पहनेंगे। तो माता यशोदा हार गई, मैं ठीक है चलो ठीक है जाओ। और फिर कृष्ण ने सांत्वना दी अपनी माँ को, कहा हाँ कि बिल्कुल चिंता नहीं करो, ये नहीं सोचो कि रास्ता बहुत कठिन होता है, रास्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं वहां पे नाना प्रकार के हिरण वगैरह होते हैं, वो अपने पूंछ से बिल्कुल रास्ते को साफ कर देते हैं, जहां भी हम जाते हैं कोई कांटे पत्थर कुछ नहीं होते हैं, और जो पत्थर होते हैं वो भी इतने नरम होते हैं, वास्तव में कृष्ण के पैर को बिल्कुल चुभते नहीं, वो तो पिघल जाते हैं कृष्ण के स्पर्श से, तो वो कहां चुभने वाले हैं कृष्ण को। और फिर रेणु जो कमल पुष्पों के पड़ जाते हैं, और फिर शीतल वर्षा पानी की आती है अपने झरनों से, नदियों से इत्यादि। इसलिए हे माँ, ये जो वृंदावन के जाने के जो पथ हैं वो बिल्कुल रुई के बराबर है, रेशम के बराबर है, हमें बिल्कुल कष्ट नहीं होता। और दोपहर के समय हम लोग गुफाओं में पेड़ के नीचे ऐसे शीतल छाया में आराम करते हैं, ठंडा जल वहां रहता है, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। भगवान तो बोलना चाहते थे कि अरे हमें इतना आनंद आता है वहां जाकर, कष्ट की बात तो दूर है, हमें तो बहुत आनंद आता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने पद चिन्हों से सुशोभित कर लिया ये सारा वृंदावन का धाम। आचार्य भी बताते हैं कि ये श्लोक कई इस तरह के श्लोकों में से सर्वश्रेष्ठ क्यों है। वैसे जो वर्णन हम यहां देख रहे हैं, जैसे कि मोर पंख, वैजयंती माला, फूलों का आभूषण, उनके दिव्य शरीर की कांति, ये वर्णन तो हम कई जगह देख सकते हैं। एक प्रार्थना है, वो है ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्म विमोहन लीला हो गई, ब्रह्मा जी विमोहित हो गए और उनको सबक सीख गए, उस समय ब्रह्मा जी ने एक प्रार्थना की थी और भगवान ने इस प्रार्थना को स्वीकार की। ब्रह्मा जी ने अपने अपने आराध्य देव से क्षमा याचना की थी और उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया था। वो इसी स्कंद के पहले अध्याय में है, दशम स्कंद का 14वां अध्याय, पहला ही श्लोक। जब ब्रह्मा जी प्रार्थना शुरू करते हैं तो पहले ही श्लोक में वो ऐसी सुंदर प्रार्थना करते हैं। ये पहला श्लोक है ब्रह्मा जी का। फिर इसके बाद हम और एक श्लोक देखेंगे द्विज पत्नियों का, ब्राह्मणों की पत्नियों का, और फिर आखिर में ये गोपियों का जो की प्रार्थना है, और तीनों की तुलना संक्षेप में करेंगे, फिर देखेंगे कि गोपियों की प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ क्यों है। नौमी द्यते भ्रमपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेनु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। इसमें ब्रह्मा जी बड़े नम्रता से, बड़े भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं और आपकी स्तुति करता हूं। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान वेदीप्यमान हैं और आपके मुखमंडल का सौंदर्य आपके गुंजा के बने कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। अनेक वन्य फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी ने क्या वर्णन किया? उस दृश्य का जो वो अपने आंखों के सामने देख रहे थे। भगवान ने कौन सा दृश्य देखा था? छोटे भगवान श्री कृष्ण का, जो कि ग्वाल बाल के रूप में वहां पर खड़े थे। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण केवल एक हाथ में, अपने बाएं हाथ में थोड़ा चावल और दही और फल लेकर खड़े थे और वो ऊपर खड़े थे। ब्रह्मा जी नीचे से आकर प्रार्थना कर रहे थे। ब्रह्मा जी एक छोटा दही भात, दही चावल कृष्ण को खाते हुए देखकर भ्रमित हो गए थे। अब वही ब्रह्मा आकर मैं कह रहे मैं आपका दास हूं, तो ब्रह्मा जी की भावना दास की भावना में है, इसलिए वो स्तुति कर रहे हैं, उनकी उनको नमन कर रहे हैं। गोपियां नमन नहीं कर रही हैं, ब्रह्मा जी नमन कर रहे हैं। और फिर भगवान के अलग अलग अव्ययों का, उनके आभूषणों का वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मा जी की भावना, हालांकि वो भगवान श्री कृष्ण के देवी शरीर का वर्णन ही कर रहे हैं, उसी शरीर का, लेकिन ब्रह्मा जी की भावना अलग है। ब्रह्मा जी की भावना थोड़े ऐश्वर्य में है, थोड़ा बहुत अपने आप को दास समझते हैं, कृष्ण को प्रभु समझ रहे हैं। और इससे आगे और एक प्रार्थना है, दशम स्कंद के 23वें अध्याय के 22वें श्लोक में, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के संग बाहर गए थे गायों को चराने के लिए, तो थोड़े ब्राह्मण वहां यज्ञ कर रहे थे, उनके मित्र भूखे हो गए थे थोड़ा प्रसाद लेने के लिए, तो कृष्ण भगवान ने उनको भेजा कि जाओ ब्राह्मणों से पूछो कि कुछ प्रसाद दे दो, कृष्ण और बलराम भूखे हैं, हम सब भूखे हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अरे क्या कृष्ण बलराम कौन है, थोड़े ग्वाल बाल हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता क्या, जाओ जाओ हमारा समय व्यर्थ मत करो। तो निराश होकर वापस चले आए ग्वाल बाल, और फिर कृष्ण ने कहा कि इनके पत्नियों के पास जाओ, यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नी के पास जाओ। और जब पत्नियों के पास गए, जैसे ही याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि कृष्ण बलराम कुछ प्रसाद चाहते हैं, तो जो भी उन्होंने यज्ञ के लिए बनाया था, जो भी घर में था, सब उठाकर उनको दे दिया, और बल्कि खुद चल के आए कृष्ण के लिए देने के लिए। क्योंकि हालांकि उन्होंने कृष्ण बलराम को कभी देखा नहीं था, उनके बारे में बहुत सुना था, और सुनकर ही उनके हृदय में उनके प्रति आकर्षण जागृत हुआ था, इसलिए श्रवण की पद्धति इतनी शक्तिशाली है। केवल भगवान के बारे में सुनकर हम उनके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। रुक्मिणी देवी ने भी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन देखने के पहले ही केवल सुनकर वो आकर्षित हो गए थे। तो उसी तरह से ये याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां, तो जब वो आए तो उन्होंने कृष्ण का सुंदर रूप का दर्शन किया, और उन्होंने जो दर्शन किया वो उन्होंने बड़े काव्यात्मक ढंग से उन्होंने यहां प्रकट किया है। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानम अब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्ज हासम। श्यामम हिरण्य परिधिम वन माल्य बरह, देखिए कितने सुंदर ढंग से यहां पर ये याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान का गुणगान कर रही हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, उन ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल से, क्षमा कीजिए 22वां, उनका रंग श्याम था और वस्त्र सुनहले थे। वे मोर पंख, रंगीन खनिज, फूल की कलियों का गुच्छा तथा जंगल के फूलों और पत्तियों की वनमाला धारण किए हुए नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे, मतलब बलराम के ऊपर रखे थे, और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। उनके कानों में कुमुदनियां सुशोभित थीं, उनके बाल गालों पर लटक रहे थे और उनका कमल मुख हंसी से युक्त था। आप कल्पना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये चित्र आपने देखा होगा, हमारे किताबों में है, बलराम के कंधों पर ऐसे हाथ रखा है और पैर बके हुए और युक्त कमल पुष्प खड़े हुए ऐसे कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और सुंदर मुख मुखारविंद उनकी हंसी है, हल्की मुस्कान है। ब्रह्मा जी ने केवल उनके शरीर की कांति, उनके वनमाला इत्यादि इनका वर्णन किया, लेकिन भगवान कृष्ण के सुंदर मृदु स्मित या उनके सुंदर हल्के मुस्कान का वर्णन नहीं किया, जो कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे मीठा या मधुर अंग है, उसका वर्णन ब्रह्मा ने नहीं किया, लेकिन द्विज पत्नियों ने किया, इसलिए इनका वर्णन थोड़ा ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन द्विज पत्नियों ने भी एक वर्णन नहीं किया जो कि गोपियों ने यहां किया, और वो क्या है, उन्होंने गोपियों या द्विज पत्नियों ने यह सुंदर मुखारविंद की हंसी का वर्णन किया है, कपूर मुखाब्ज हासम यहां कहा उन्होंने आखिरी इसमें, लेकिन किस बात का वर्णन द्विज पत्नियों ने नहीं किया, वेणु गीत बांसुरे के वादन का। इस श्लोक में जो गोपियों ने अपने हृदय में देखा भगवान के सुंदर स्वरूप का, उनके वन श्लोक जो है पूर्ण माना जाता है, संपूर्ण है ये इसमें कृष्ण का वर्णन, इसलिए सबसे सुंदर माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ भगवान का स्मरण करने के लिए। इसलिए हमें भी ये श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, इसको कंठस्थ करना चाहिए और मन में इसके बारे में सोचना चाहिए, और वो दृश्य मन में रखना चाहिए कि कैसे दिख रहे हैं भगवान। वो जो बड़ा किताब है तस्वीरों का वो यहां नहीं है, किसी काम से बाहर दिया हुआ है किसी को, नहीं तो आपको दिखाते सारे तस्वीरें। ब्रह्मा जी ने कौन से कृष्ण का स्मरण किया, द्विज पत्नियों ने कौन से कृष्ण का स्मरण किया, और गोपियों ने किस कृष्ण का स्मरण किया। है तो एक ही वही कृष्ण, लेकिन तीनों के जो भावना थी देखने के लिए वो अलग थी। ब्रह्मा जी तो दास्य रस में है, द्विज पत्नियां वो तो मधुरी रस में है, लेकिन उनका एक दोष है। वो दोष क्या है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और उनका जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा में होने के नाते थोड़ा बहुत ऐश्वर्य उनके हृदय में था, और ब्राह्मण कुल में होने के नाते थोड़ा बहुत ऐश्वर्य भी आ गया, लेकिन फिर भी अपने मथुरा मंडल के जो जन्म के दोष के पार थोड़ा बहुत आ भी चुके थे, वृंदावन और मथुरा के बीच में जो सीमा है उसको थोड़ा बहुत पार कर गए थे। वृंदावन के रस में और मथुरा के रस में थोड़ा अंतर है कि वृंदावन का रस ज्यादा मधुर है, मथुरा के रस में थोड़ा ऐश्वर्य घुस जाता है, लेकिन ये नाग पत्नी द्विज पत्नियां इस ऐश्वर्य के भाव से प्राय निकल चुकी थीं, और यहां चर्चा करते करते वो भी व्रज भाव में प्रवेश कर चुकी थीं, और उनको आचार्य बताते हैं अगले जन्म में गोपियों के गर्भ में जन्म मिलेगा, अगले जन्म में वो भी जाकर ब्रज की गोपियां बनेंगी और वो भी अपने ब्रज भाव को परिपूर्ण कर सकेंगी। इसलिए वो तट में है, ब्रह्मा जी दास्य में है, थोड़ा बहुत ऐश्वर्य की भावना है, ये द्विज पत्नियां जो हैं ये तट पर हैं, मथुरा के भी हैं ब्रज के भी हैं, लेकिन अगले जन्म में पूरी तरह से ब्रज के हो जाएंगी, और ये गोपियां ये तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम के एक उदाहरण है, इससे श्रेष्ठ कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए ये श्लोक को सबसे सुंदर बताया गया है। तो आइए एक और बार केवल ये बरहापीडम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर आज की कथा समाप्त करेंगे।
बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न है? यह है कि द्विज पत्नियों ने हालांकि ब्रज के कृष्ण का दर्शन किया, फिर भी उनको फिर बाद में जाके और ब्रज में जन्म लेना पड़ा। ये उनकी जीवन की परिपूर्णता है, क्योंकि हालांकि उन्होंने कृष्ण को देखा, लेकिन उनकी देखने की भावना में थोड़ा बहुत ऐश्वर्य भाव का मिश्रण था, थोड़ा बहुत। उसे वह काफी हद तक छूट गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत था। ब्रजवासियों में बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो तीव्र अपने स्मरण करके फिर अगले जन्म इस योग्य हो गई कि ब्रज वो गोपियों के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया और फिर ब्रज गोपियां बन गई। अब ब्राह्मण की पत्नियां थी मथुरा की, लेकिन अगले जन्म में ब्रज गोपियां वो बनने के लिए योग्य हो गई। वृंदावन में जाके वहां उनका बच्चों का जन्म कराना चाहते हैं तो क्या ये ठीक है? वो ब्रजवासी बन जाते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ब्रजवासी होना केवल एक भौगोलिक बात नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल हम वृंदावन में जा हो गए तो हम ब्रजवासी हो गए। ये बाहरी दृष्टि से हो सकता है, लेकिन भावना से हमें ब्रजवासी होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये असली चीज है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भावना से ब्रजवासी बनता है तो वह जहां भी जाए दुनिया में वो वृंदावन में रहेगा। जैसे प्रभुपाद जी, वो तो अपने वृद्ध अवस्था में वृंदावन में रहते थे। ब्रज कौन ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति मार्ग में आकर वृंदावन में रहे बुढ़ापे में और छोड़ना चाहे वृंदावन को? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। साधु, कितने सारे साधु वहीं पर रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने दिव्य आनंद को त्याग दिया। क्यों? संसार के उद्धार के लिए। लेकिन क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का स्मरण चिंतन करते रहते थे, इसलिए वो खुद चलते फिरते वृंदावन थे। इसलिए वो जब वृंदावन को छोड़ के गए, वृंदावन ने उनको छोड़ा नहीं, इसलिए वृंदावन उनके हृदय में समाया हुआ था, इसलिए वो सब जगह वृंदावन को ले गए। वृंदावन इसलिए नव वृंदावन उन्होंने बनाया अमेरिका में इधर उधर। तो मुख्य बात यह नहीं है कि हम कहां जन्म लेते हैं। ऐसे कई लोग अमेरिका में जाके बच्चों को जन्म लेते हैं कि वहां का सिटीजनशिप मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए। तो ऐसे करने से सीधा कोई लाभ नहीं है ज्यादा, ठीक है। अगर उनकी भावना सही है तो भगवान उसका आदान प्रदान अवश्य करेंगे। भावना की बात है, केवल जन्म लेने की बात नहीं है। आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ मतलब है कि भगवान के चरण कमलों में हम तुलसी के पत्ते, मंजरी इत्यादि अर्पण करते हैं, लेकिन हम जब फूलों के माला में डालना चाहते हैं तुलसी, तो किसी ने मना किया था ऐसा? नहीं, मना नहीं करना चाहिए, बल्कि आराधना उपासना का एक सर्वश्रेष्ठ अंग होता है तुलसी का हार पहनाना भगवान को। बल्कि हमारा तो एक स्वप्न है कि एक दिन आएगा जब हम राधा जी राधा गोकुलानंद को, मतलब गोकुलानंद को, कृष्ण को हमारे यहां हर रोज एक तुलसी का हार पहनाएंगे। ये एक स्वप्न है, मतलब ये एक अभिलाषा है भक्तों के लिए कि कब हम वो कर पाएंगे कि हर रोज तुलसी का हार पहनाएंगे भगवान कृष्ण को। तो ये तो मना करने की बात नहीं है, बल्कि कोई करे तो बहुत सुंदर बात है, भगवान तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन राधा रानी को तुलसी का हार नहीं पहनाना है, नहीं राधा रानी के चरणों में तुलसी डालना है। तुलसी का हार केवल राधा रानी के चरण कमलों में देना है, वो कृष्ण को अर्पण करने के लिए। लेकिन कृष्ण के लिए चरण कमलों में भी अर्पण करना है और भगवान के गले में भी अर्पण करना है। तो अवश्य तुलसी का हार पहला अगर पहना सकते हैं तो पहनाना चाहिए।